हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 34 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थामा वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा वंची विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात हरविंद नेत्रा कृष्णातरं किमपि तत्व अहम् न जानि। तस्मात् संकीर्तनम् यस्य जगन्मंगलमोहसा महत्तामपि कौरव्य विद् यै कान्तिकानिष्कृतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 13 जिसका शीर्षक है भगवान वराह का प्राकट्य। तो हमने देखा किस प्रकार संसार का कल्याण करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और मनु और शत्रुपा की संतान को पृथ्वी पर विराजमान करने के लिए, उनको एक स्थान प्रदान करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से वराह का अवतार धारण किया और फिर राक्षस हिरण्यक्ष का वध कर दिया। जब भगवान ने राक्षस हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो जितने भी बड़े बड़े वहां पर ऋषि मुनि थे, जितने बड़े बड़े देवता थे, वो सब देख रहे थे उनका जो युद्ध था भगवान का और हिरण्याक्ष का। और जब भगवान उसका वध कर लेने के बाद भगवान का स्वरूप देखा, तो सारे ऋषि मुनि और सारे देवता भगवान की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। तो श्लोक नंबर 34 से हम आज प्रारंभ करेंगे। ऋषयः उचुः जितं जितं तेजितयख्य भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु नीलिल्युरद्धया तस्मै नमः कारण सूकरायते जितं जितं तेजितयख्य भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु नीलिल्युरद्धयास् तस्मै नमः कारण सूकरायते जितं जितं तेजितः यज्ञ भावनः। सारे ऋषि मुनि, ऋषय मतलब जो भी सारे ऋषि मुनि है, वो इस तरह से बोल रहे थे, जितं जितं जय हो हे भगवान तुम्हारी जय हो, अजित हे जीते ना जा सकने वाले, मतलब जो भगवान जो किसी से कभी हारते नहीं है, आज फिर उनका हिरण्यक्ष से युद्ध था और भगवान जीत गए, तो सारे ऋषि मुनि भगवान की इस प्रकार से स्तुति करते हैं। यज्ञ भावना अर्थात समस्त यज्ञ जो है संपन्न करने पर जो उस यज्ञ के भोक्ता है वो भगवान की आज विजय है। त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः, त्रयीम का मतलब होता है साक्षात वेद, क्योंकि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद शुरू में होते थे, तो भगवान को त्रयीम और तनुम मतलब ऐसा शरीर, स्वाम मतलब अपना, परिधुन्वते हिलाते हुए, मतलब भगवान का स्वरूप बहुत ही पवित्र है और उसको हिलाते हुए नमः यानी नमस्कार करते हैं। यद रोम गर्तेषु, यद मन जिनके, रोम मतलब रुएं, गर्तेषु मतलब छेदों में, जो भगवान के रोम के छेद हैं, निलिलयुः डूबे हुए उद्दयः सागर, जिनके रोम मतलब क्योंकि भगवान जब सागर में गए तो वहां से वो पृथ्वी को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके तो एक एक अंग में सारे समुद्र सारे सागर समाये हुए हैं। यद्रोम गर्तेषु नीलिल्युरद्धया, तो ऐसे भगवान को सूकर का स्वरूप धारण करके सागर में जाकर जाना पड़ा, उसका कारण पृथ्वी का उद्धार है। तो आप तो परम पवित्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, इसलिए तस्मै नमः कारण सूकराय, अब आपने ये सूकर का स्वरूप धारण किया है, तो मैं उस स्वरूप को जो कि केवल आप अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए धारण करते हो उसको मैं नमस्कार करता हूँ, वरना आपके तो प्रत्येक अंग में समुद्र हैं और आप तीनों वेद साक्षात वेदों का स्वरूप हैं और आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, तो भले आप कोई भी स्वरूप धारण करते हैं लेकिन फिर भी आप उतने ही पवित्र हैं, उतने ही बलवान हैं, उतने ही शक्तिमान हैं जितने कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में, बल्कि सारे ही स्वरूप भगवान के तो वास्तविक ही हैं। और यहाँ पर क्योंकि आज भगवान ने सूकर स्वरूप धारण करके जीवों का कल्याण किया है, तो सारे ऋषि मुनि उसकी स्तुति करते हैं। अनुवाद देखिए, सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब सुकर का स्वरूप धारण किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण हैं, क्योंकि उनका रूप दिव्य होता है, अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि कारणों में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं, उनके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद है। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और अजेय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनसे मात्र इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का ब्रह्म नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने सुकर रूप धारण किया है। ऋषियों तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष एवं उच्च लोकों के अन्य वासियों की यही स्पष्ट धारणा है। श्री प्रभुपाद जी बोलते, भले भगवान कैसा भी स्वरूप धारण करें तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि वो भगवान है। उनका स्वरूप चाहे कोई भी हो, उनकी वास्तविक जो दिव्यता है, उनकी भगवतता है, उस पर कभी भी आंच नहीं आती है, चाहे वो कैसा भी स्वरूप धारण करें। इसीलिए सारे ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। आगे ऋषि मुनि कहते हैं, रूपम तवैतन ननो दुष्कृतात्मना दुर्दर्शनम देवयदत्वरात्मकम् चन्दांसि यस्य त्वचि बर्हि रोमास् वाच्यं दृशि त्वं गृशि चात्रुहोत्रम्। रूपम तवै, रूपम मतलब स्वरूप, तव मतलब तुम्हारा, एतत यानी ये, ननु लेकिन, दुष्कृतात्मना जो दुष्कृतात्मा है, यानी भगवान को कहते हैं कि जो आपका स्वरूप है वो तो परम पवित्र है, लेकिन जो दुष्कृतात्मना है, दुर्दर्शनम देव, दुर्दर्शनम मतलब देख पाना उनके लिए कठिन है। भगवान के स्वरूप को हर कोई नहीं देख सकता। भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता, तो मूढ़ हम ना भी जानाते, जो मूढ़ है, जो दुष्ट है, वो मुझे नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ पर ऋषि मुनि कहते, दुर्दर्शनम देव यदत्वरात्मकम्, यत मना वह अद्वर आत्मकम्, यज्ञ संपन्न करने के कारण पूजन, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं वो सब भगवान की स्तुति करने के लिए हो रहे हैं। जितनी भी पूजा हो रही है संसार में, चाहे वो किसी की भी हो रही है, वो केवल भगवान के लिए ही है। भगवान कहते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विता तेपि मामेव कौन्तेय, वो सब भक्ति भगवान की हो रही है। ये एक अलग बात है कि वो तरीका गलत है, लेकिन कोई भी देवता उस पूजा को रखने के लिए समर्थ नहीं है। भक्ति आपकी जो भी आप कर रहे हो वो भगवान को चाहने वाली है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि यदत्वरात्मकम् यानी यज्ञ संपन्न करने के कारण आप तो भगवान समस्त यज्ञों के द्वारा पूजनीय है। छंदांसि यस्य त्वचि बर्हरो, छंदांसि यानी जो वेदों के छंद होते हैं, गायत्री मंत्र होते हैं या दूसरे जितने छंद होते हैं, वो यस्य जिसके, त्वचि यानी त्वचा का स्पर्श, बरही यानी कुशा नामक पवित्र घास, तो भगवान के जो अंग हैं, सारे शरीर के जो रोम हैं, वो उस तरह से हैं। यह संसार में कुशा नाम की घास होती है जो बहुत ही पवित्र होती है और यज्ञ करने के टाइम पर भी उसकी आवश्यकता होती है। प्योरिटी के लिए जब ग्रहण होता है तो भी उसको यूज करते हैं, अपने फिंगर में डालते हैं ताकि वो पवित्र स्थान रहता है ना, पवित्र करने के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो ब्राह्मण कुशा घास जो होती है उससे छिड़कते हैं जल, तो प्योरिटी आती है। तो यहाँ पर बताया जाता है वो कुशा घास क्या है, त्वचि बरही रोमा, जो भगवान वराह के रोम है ना,
भगवान अभी सूकर स्वरूप में है, तो उनके रोम जो हैं वो कुशा घास के, मतलब कुशा घास भगवान के स्वरूप रोम की तरह है, रोए हैं। और वाच्यम दृशिता त्वं, वाच्यम सॉरी आज्यम का मतलब होता है घी, दृशि मतलब आंखों में, तू भी, अंग्रिशु चार पांव पर, चातु होत्रम चार प्रकार के सकाम कर। यानी भगवान जो यज्ञ है के स्वरूप है, भगवान के जो रोम है वो कोशागास है, आंखें धृति अर्थात वो घी के समान है, और भगवान के जो चार पांव हैं वो सब काम कर्मों के समान है। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा है, त्वचा के संपर्क में है, आपके शरीर के रोम कोश है, आपकी आंखें घृत है, और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दुष्टों का एक वर्ग है जिसे भगवत गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी हैं, वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। वो वेदों के कट्टर अनुयायी हैं, लेकिन वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, पुराण में जो भागवतम में भगवान की जो लीलाएं हैं उनको नहीं मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कट्टर अनुयायी हैं और भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं, वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। पूज्य शुकर के रूप में भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं, वे भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा के अवतारवाद कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट हैं, और भगवत गीता 7.15 में इन्हें ना केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम कहा गया है। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृत्य ज्ञान आसुरम भावमाश्रितम। तो भगवान कहते हैं वो तो दुष्ट हैं और माया के द्वारा उनका ज्ञान भी हरण कर लिया गया है, मूढ़ हैं, इसीलिए वो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। और ये भी कहा गया है कि उनका ज्ञान उनके नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जा चुका है। ऐसे गर्हित व्यक्तियों के लिए विराट सूकर के रूप में भगवान का अवतार अदृश्य रहता है। वेदों के कट्टर अनुयायी को जो भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवतम से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप हैं। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकूपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतएव वे वैदिक मंत्रों के विशेष रूप से गायत्री मंत्र के साक्षात स्वरूप हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर भौतिक जगत में बहुत सारे नास्तिक लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के इन स्वरूपों को स्वीकार नहीं करते हैं, और हमें बताते हैं कि क्या भगवान हो सकता है जो सुअर के रूप में आए, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो वो नास्तिकवादी विचार है, लेकिन यहाँ हमारा भागवत क्या कहता है कि भगवान यदि सूकर का स्वरूप भी धारण करते हैं तो भी उनके जो शरीर के रोम हैं वो छंद है, वो कुश है, जो भगवान की त्वचा है वो वेदों की स्तुतियां हैं, भगवान की आंखें, भगवान के चरण, भगवान का शरीर वो साक्षात यज्ञ कुंड है, वो साक्षात पवित्र मंत्र की तरह है। तो भगवान चाहे कोई भी स्वरूप धारण करते हैं, हमें भगवान में पूरा प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान पर
पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान किसी भी स्थिति में आए, किसी भी स्वरूप में आए, तो भगवान के सारे जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं। और भगवान कहते हैं भगवत गीता के 4.9 में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देव पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। अर्जुन, जीव का लक्ष्य तो मुझे प्राप्त करना है और बहुत सरल है। अगर आप मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मान लेते हो तो तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी सुकृति है कि हम भगवान के प्रत्येक स्वरूप को, प्रत्येक कर्म को दिव्य मानकर आगे चलें। भगवान के किसी भी कर्म में, किसी भी स्वरूप में हमको संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए आगे ऋषि मुनि भगवान के शरीर के प्रत्येक अंग को यज्ञ पात्र ही बता रहे हैं। वे कहते हैं, रिक्तुंड आसीत स्त्रुव ईशनासयो एडोदरे चमसाकररंध्रे प्राशित्रमासी ग्रसने ग्रहास्तोते यच्चर्वणं ते भगवन्न अग्निहोत्रम् रिक्तुंड आसीत् ध्रुव ईशनासयो इडोदरे चमसाकररंध्रे प्राशित्रमासि ग्रसने ग्रहास्तोते यच्चर्वणं ते भगवन्न अग्निहोत्रम्। ऋक् यानी यज्ञ का पात्र, तुंडे अर्थात जीव पर, आसीत यानी है, स्त्रुवः अर्थात यज्ञ का दूसरा पात्र, ईशा अर्थात हे प्रभु, नासयो नथुनों का, इडा अर्थात खाने का पात्र, उदरे अर्थात पेट में, चमसा अर्थात यज्ञ का अन्य पात्र या चम्मच, करणरंध्रे यानी कान के छिद्रों में, प्राशित्रम ब्रह्मा नामक पात्र, आसी यानी मुख में, ग्रसने यानी गले में, ग्रहा यानी सोम पात्र तू, लेकिन ते तुम्हारे, यत जो, चर्वणम अर्थात चबाना, ते तुम्हारा भगवान, हे भगवान हे प्रभु, अग्निहोत्रम यानी अपनी यज्ञ अग्नि के माध्यम से तुम्हारा भोजन है। अर्थात हे प्रभु, आपकी जीभ यज्ञ का पात्र यानी ऋक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र अर्थात त्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र अर्थात इडा है, और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र अर्थात चम्मच है, आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वे अग्निहोत्र कहलाता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मतलब वो क्या बताते हैं कि जो वेद में लिखा हुआ है उसमें जो अनुष्ठान करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वे थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की यथा श्रिक श्रुवा पर ही, जो यहाँ पर लिखे हुए ना, श्रिक तुंड आसे, तो इन सब के बारे में बता रहे श्रीला प्रभुपाद जी के यज्ञ के विभिन्न पात्रों की तथा श्रिक श्रुवा पर ही चातुर्होम होत्र, इडा चम्मच, प्राशित्र
ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता है यज्ञ के फल प्राप्त नहीं होते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा नहीं है। अतः इस कलयुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य आदेश है। यह स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर जैसे श्लोक में सारे ऋषि मुनि बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप ही साक्षात यज्ञ का स्वरूप है, इसलिए जो भगवान का नाम लेता है वो समझो समस्त यज्ञों को संपन्न करना है। और इस कलयुग में तो केवल यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजन्ति ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान है वो संकीर्तन यज्ञ को ही पालन करते हैं। तो इसे हमको जब तक हम यज्ञ नहीं करते ना तब तक हम कोई भी पवित्र कार्य नहीं कर सकते। यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमको कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए अपने जीवन का, एक दिन में कुछ ऐसा समय, एक दिन में नहीं निकाल सकते तो एक हफ्ते में, नहीं निकाल सकते तो एक एकादशी के दिन 11 दिन के बाद या फिर एक महीने में, मतलब अपने घर में ऐसा आयोजन करना चाहिए कि कुछ शुद्ध भक्त आए और बस नॉन स्टॉप संकीर्तन यज्ञ करें। इससे वातावरण प्योर होगा। इसलिए हमको खुद भी इस बात को समझना चाहिए कि हमको किसी तरह से संकीर्तन यज्ञ से जुड़ना है और सबको जोड़ना है। यही वास्तव में विधि है। जो बुद्धिमान है ना इस कलयुग में यही यज्ञ करेंगे। बाकी वेदवादी जो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया वो तो ना जाने किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उल्टे सीधे मंत्र पढ़ते हैं जिसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, दीक्षानुजन्मोपसद शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनीय द्रष्ट्र जिह्वा प्रवर्क्यस्तव शीर्षकं कृतो सत्यावसत्यम चितयो सवोहिते। दीक्षानुजन्मो, दीक्षा अर्थात दीक्षा, अनुजन्म अर्थात आध्यात्मिक जन्म या बारंबार अवतार, उपसदह अर्थात तीन प्रकार की इच्छाएं, संबंध कर्म तथा चर्म लक्ष्य, शिरह धर्म अर्थात गर्दन, और त्वम यानी तुम, प्रायणीय अर्थात दीक्षा के परिमाण के बाद, उदयनीय अर्थात इच्छाओं का अंतिम संस्कार, दृष्ट्र धाड़े जिह्वा जीव, प्रवर्ग्यम अर्थात पहले के कार्य, तव यानी तुम्हारे, शीर्षकम अर्थात सिर, कृतो अर्थात यज्ञ का, सत्यावसत्यम, सत्या मतलब यज्ञ के बिना अग्नि, आवसत्यम अर्थात पूजा की अग्नि, और चित्तयो सवोहिते अर्थात चित्तय अर्थात समस्त इच्छाओं का समूह, असवह प्राणवायु ही यानी निश्चय ही तुम्हारे। ऋषि मुनि कहते हैं, प्रभु इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें
दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समूचय है। आगे ऋषि मुनि अत्यंत ही सुंदर स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, सोमस्तुरेत सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देव धातव सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस् त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्ट बंधन। सोमस्तुरेत, सोमस्तुरेत मतलब आपकी वीर्य सोमयज्ञ है। सवनान्य अवस्थित, सवनानी मतलब प्रातः काल के अनुष्ठान, अवस्थित यानी शरीर वृद्धि के विभिन्न अवस्थाएं, और संस्था विभेदास्तव देव धातव, संस्था विभेदा यानी यज्ञ के सात प्रकार, तव यानी तुम्हारे, देव हे प्रभु, धातव यानी शरीर के अव्यय तथा त्वचा एवं मांस, सत्राणि सर्वाणि शरीर संधि, सत्राणि मतलब 12 दिनों तक चलने वाले जो सत्र होते हैं यज्ञ उनको बोलते हैं, यज्ञ को सत्र भी बोला जाता है, और सर्वाणि सारे, शरीर यानी शारीरिक, संधि यानी जोड़, और त्वम यानी आप, सर्व यज्ञ कृतु, सर्व यानी समस्त, यज्ञ मना असोम यज्ञ, कृतु अर्थात सोम यज्ञ, और इष्ट बंधन अर्थात चरम इच्छा, बंधन यानी आसक्ति। अनुवाद, ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्नि नष्टोम यज्ञ के सात तत्व हैं। आपके शरीर के जोर 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं, और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक कर्म कांड के अनुयायी सात प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, अक्थ और षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आपत्तेर्याम कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है वह भगवान के पास स्थित माना जाता है, किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है उसके लिए यह समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि भगवान से कहते हैं, आपके अतिरिक्त तो कोई और यज्ञ नहीं, आप ही यज्ञ की सामग्री हो, आप ही यज्ञ के मंत्र हो, आप ही यज्ञ की आहुति हो, आप ही यज्ञ का स्वरूप हो। तो जो भगवान के साथ संपर्क कर लेता है, जो भगवान के साथ प्रेम करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैसे तो जो कर्मकांडी लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन जो कोई भक्ति योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है उसके लिए यह समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए। अब उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यज्ञ का भोक्ता है, जो यज्ञ की सामग्री है, जो यज्ञ की आहुति है, जो यज्ञ के मंत्र हैं, वही भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं, उसी भगवान की वो सेवा करता है, तो उसने समझो सारे यज्ञ संपन्न कर लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को कंटिन्यू कर सकूं। हरे कृष्ण।